उठा वक्त है, जिंदगी का सफर थोड़ा सख्त है। रुका हुआ है इस जहां का कारवां, ये रात जाएगी गुजर तू देखना।
आत्मा के मन में प्रकट हुआ अहंकार परमात्मा नष्ट करते हैं, इसका उदाहरण भक्ति मार्ग में दिखाया है। कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं और अर्जुन देखता है कि एक ब्राह्मण, एक वैष्णव ब्राह्मण बैठकर घास खा रहा है, इतना अहिंसक कि कोई हिंसा नहीं करना चाहता, घास उसका भोजन है, परंतु उसके हाथ में, बाजू में रखी एक तलवार भी है। अर्जुन को आश्चर्य होता है, इतना अहिंसक व्यक्ति, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति पर तलवार क्यों रखी है। कृष्ण कहते हैं जाकर पूछो। अर्जुन पूछता है कि आप तो वैष्णव लगते हो, परम अहिंसक, फिर ये तलवार क्यों रखी है। वो कहता है मुझे 7 लोगों की तलाश है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं मार दूंगा उन्हें। अर्जुन को आश्चर्य होता है वो कौन है जिनके प्रति इतना क्रोध। वो ब्राह्मण कहता है ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरे प्रभु को बहुत सताया है और ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता कि मेरे प्रभु को कोई सताए। अर्जुन पूछता है वो कौन लोग हैं। ब्राह्मण कहता है पहला है नारद, दिन रात पुकार पुकार के, भजन गा गा के मेरे प्रभु की नींद पिटा दी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन को आश्चर्य भी लगता है और डर भी। दूसरा कौन? वो कहता है दूसरा वो द्रौपदी, जब मेरे प्रभु भोजन के लिए बैठे थे तब उसने पुकारा, वो भी जंगल में, इतने सारे ऋषि मुनि वहां आए थे और मेरे प्रभु को झूठा खिलाया, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन तो और डरता है। तीसरा वो शबरी जिसने झूठे बेर खिलाए। चौथा वो विदुरानी, केला तो खुद खाया और छिलके मेरे प्रभु को खिलाए। पांचवा वो प्रह्लाद पता नहीं कहां कहां फंसा और कहां कहां मेरे प्रभु को आना पड़ा, कहां कहां हाथ डालना पड़ा, कभी आग में, कहीं खाई में, तो कहीं खंभे से निकलना पड़ा। मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और कौन? वो सुदामा सूखे चावल ले आया। अर्जुन पूछता है, और वो सातवा कौन है? वो ब्राह्मण कहता है, सातवा तो सबसे खतरनाक है, वो अर्जुन है। अर्जुन घबरा जाता है, वो कैसे, उसने क्या बिगाड़ा? वो कहता है, मेरे प्रभु को सारथी बनाए फिरता है, छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन तो घबरा जाता है, उसके मन में जो अभिमान उत्पन्न हुआ होता है कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं, इस भक्त की ऐसी निरागस भक्ति, इस भक्त की ऐसी श्रेष्ठतम भावनाएं कि भगवान के लिए ऐसा उत्कट प्रेम देखकर वो पानी पानी हो जाता है। ये कैसा भगत है? संसार में भगत भी भगवान से मांगते हैं, ये तो मांगना तो दूर, किनकी तलाश में है? कैसा संबंध जोड़ा होगा भगवान से, कैसा प्यार अंतस में उतरा होगा उस प्रभु के लिए, कैसी भावनाएं रही होगी, और उसी कॉन्शियसनेस में 2400 घंटे रहना, उस एक ही लगन में, उस एक की ही याद में। ये चेतना की कितनी ऊंची स्थिति है, जहां संसार में परस्पर विरोध, द्वेष और विकारों का साम्राज्य है, ऐसे साम्राज्य में रहते हुए मन को इतना निरागस, इतना प्रांजल, इतना पवित्र कर देना, और उस मन को उस परमात्मा में लगा के रखना, उससे कैसा गहराई का संबंध जोड़ रखा है। तो आज बाबा ने अनुभव को बढ़ाने की देखा है, क्या करना है? अनुभव को बढ़ाना। जो अनुभव आज हुआ था, कल उससे आगे हो, परसों उससे आगे, और अनुभव के कुछ आधार है। एक है अनुभूति, एक है अनुभव। अंतर क्या है? अनुभव टॉप पर है, अनुभूति में कल्पनाएं हो सकती है, अनुभव में कल्पना नहीं होती। वैसे दोनों भी समानार्थी शब्द है, परंतु भाषा की गहराई में जाओ तो अनुभूति एक महसूसता है, उसमें व्यक्ति की कल्पनाएं सम्मिलित हो सकती है, और अनुभव अनुभव है, द हाईएस्ट रियलाइजेशन। अनुभूति सीढ़ी है अनुभव तक पहुंचने की। तो आज की मुरली में बाबा ने अनुभव करने को कहा। क्या अनुभव करना है? संबंध। भक्ति मार्ग में 5 प्रकार की भक्ति बताई है। पहली शांत भक्ति, जिसमें भगत ऊपर से कोई भी दिखावा नहीं करता, परंतु अंदर ही अंदर प्रभु प्रेम से भरा रहता है, उदाहरण भीष्म। दूसरा दास्य भक्ति, हनुमान। तीसरा सखा भक्ति, भगवान कौन है? मेरा मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है। मधुरा भक्ति, वो कौन है? प्रियतम है। भक्तों ने अपने आप को स्त्री समझा और उसे पुरुष, उसमें स्त्री भक्त भी है तो भक्तिन भी है तो भगत भी है, दोनों। वात्सल्य भक्ति, जहां भगवान कौन है? छोटा सा बालक। एक है सकाम भक्ति, एक है निष्काम भक्ति। एक है व्यभिचारी भक्ति, एक है अव्यभिचारी भक्ति, एक है वैधि भक्ति, एक है रति भक्ति। वैधि जिसमें विधि और कर्मकांड में भक्त डूबा रहता है, एक है हाईएस्ट, उसमें सारे कर्मकांड छूट गए हैं। तो आज की व्यक्तवाणी बाबा ने अनुभव करने को कहा है, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव। एक है जानना, एक है मानना, एक है विजुअलाइज करना, देखना, और हाईएस्ट है अनुभव। और अनुभव के साथ तल है। जो भी अभी कहीं और चर्चा जिसकी हुई थी, अनुभव अर्थात जो शरीर के तल पर हो, अनुभव अर्थात जो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, अनुभव अर्थात जिसकी प्रैक्टिस की जा सके। जो आज किया वो दोपहर को और शाम को भी प्रैक्टिस कर सके। अनुभव अर्थात वो रिप्रोड्यूस किया जा सके। जो अनुभव कल अमृत वेला हुआ, वो आज और अभी इसी वक्त, जैसे साइंस के केमिकल्स किसी भी समय डाले जाते हैं तो वही परिणाम होगा, उसी तरह अनुभूति भी, अनुभव भी वैसा होना चाहिए। आधी रात को उठ गए तो भी वो अनुभव हो जाए, उसे कहेंगे अनुभूति। अनुभव अविनाशी होना चाहिए और अनुभव परिवर्तन लाने वाला होना चाहिए। जब तक अनुभूति में सात चीजें नहीं, वो अनुभव नहीं है, वो कल्पना है, बुद्धि विलास है, वो चिंतन है, वो मनन है। चिंतन मनन का अपना महत्व है, जिससे प्रेरणा मिलती है, परंतु परिवर्तन कम आता है। जैसे विकारों के अनुभव शरीर के तल पर है, वैसे अध्यात्म के अनुभव भी इस तन पर होने चाहिए। यहां कुछ कुछ प्रकट हो जाने चाहिए, अष्ट सात्विक भाव, तब वो गहरे होंगे। और अनुभव डीप होने चाहिए, गहरे। जितना गहरा अनुभव उतना अविनाशी परिवर्तन। तो अनुभव के साथ तल है आज की अव्यक्तवाणी। ढेर सारी बातें उसमें बाबा ने कही है। क्या क्या कहा है, क्या कहा है? बाप और बच्चों का संगम। और क्या कहा? भगत और क्या कहा? सर्व संबंधों का अनुभव। और क्या कहा? सबसे पहले ये बताओ, हर एक ने मुरली पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? क्या केवल सुनी है? अगर पढ़ी है तो कितनी बार पढ़ी है, ये दूसरा प्रश्न है। भगवान के महावाक्य एक एक लाइन थीसिस का टॉपिक है। उसके मुखारविंद से जो निकल रहा है वो साधारण नहीं है। एक एक वाक्य एक एक शास्त्र है, इतनी उसमें गहराई, चौड़ाई और लंबाई है। एक वाक्य ही चित्त को और मन को मगन कर सकता है। आज की मुरली में तीन शब्द भक्तों के लिए बाबा ने प्रयोग किए हैं। भगत क्या करते हैं? मस्ती, शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, और लवलीन। वो भगत ऐसा होते हैं क्योंकि तुम यहाँ ऐसा होते हो। क्या ऐसे हुए थे? अभी अभी योग चला ओम शांति भवन में, कैसा वायुमंडल था? शक्तिशाली, पावरफुल। जब ड्रामा ने ऐसी मदद दी कि इतनी महान आत्माओं के बीच बैठकर चित्त को प्रभु में लगाए, तो हमारा मन उस समय क्या कर रहा था? क्या वैसी भक्तों जैसी अवस्था हो गई थी? शुद्ध बुद्ध खो जाना, मस्ती और लवलीन। भारत का एक योगी महेश योगी कभी विदेश गए थे और विदेश में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए टीएम मेडिटेशन के। 4000 स्कॉलर्स बुद्धिमान लोगों को बिठाया और सबको मेडिटेशन करवाया। स्टडीज पब्लिश हुई, उसको कहा जाता है महर्षिज इफेक्ट, और देखा कि क्राइम रेट इस मेडिटेशन के प्रभाव से उस समय कम हो गया था। कहीं लिखा है 16%, कहीं 50% तक लिखा है। विदेश में किसी भी तरह की ध्यान का ध्यान जब सब लोग संगठित रूप में बैठते हैं, वो कोई आध्यात्मिक लोग नहीं थे जो बैठे थे, उनको ध्यान की विधि सिखाई गई और बिठाया। इतना प्रचंड प्रभाव है। तो जहां जहां संगठित योग होगा वहां वहां हम अपना सहयोग दे और सहयोग ले उस वायुमंडल से, क्योंकि ऐसा वातावरण ऐसा संघ इस संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। इतनी सारी महान आत्माएं एक जगह इकट्ठी हो जाए, नुमा शाम का समय हो, ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस हो, ओम शांति भवन हो, भगवान की अवतरण भूमि मधुबन हो, जहां कण कण में पवित्रता है, तो कितना इसका फायदा उठाना चाहिए। आज 17 तारीख, कल 18, इस मुरली से हम 18 पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहला मिलन, मुरली की शुरुआत कहां से है? मिलन। कैसा है ये मिलन? अव्यक्त मिलन है, अव्यक्ति मिलन है। लास्ट संडे की मुरली क्या था? तुम्हें कौन सी आदत पड़ती जाएगी? अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की तुमको आदत पड़ती जाएगी। बार बार उसको समझना है, वो कैसे बोलता है, उसकी क्या बातें हैं, उसकी क्या भावना है, उसकी भाषा शैली कैसी है। तो ये मिलन अव्यक्त है, ये मिलन केवल संगम पर होता है, और ये मिलन का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इस मिलन का स्थान से भी कोई संबंध नहीं है। ये मिलन अव्यक्त है, व्यक्त नहीं, अनमैनिफेस्ट। कोई कहां पर भी बैठा हो ये मिलन मनाया जा सकता है, मना सकता है और मनाते भी है। बाबा का शब्द है मिलन। अब हमें क्या करना है? अनुभव। जो भी थियरी है उस सब को ड्रिल में कन्वर्ट कर देना है, जो भी थियरी है उस सब को अनुभव में परिवर्तित कर देना है। कैसे? देखेंगे अलग अलग रूपों में उससे मिलन हो रहा है, एकात्मिक रूप में मिलन हो रहा है, आत्मा परमात्मा में समा नहीं सकती, परंतु ये हमारा अनुभव है अपनी आत्मा को उसमें समाते हुए देखना। मैं आत्मा उसमें डूब रही हूं। सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं, परंतु भावनात्मक रूप से यह संभव है कि मैं आत्मा और वो परमात्मा एक हो गए हैं, ये ज्योति और वो ज्योति एक हो गई है, ये बूंद और वो सागर एक हो गया है। बूंद को डर था खो ना जाऊं, परंतु उसे क्या पता वो क्या बनने जा रही है। नदी को डर है खो ना जाऊं, मेरे अस्तित्व का क्या होगा, मैं कितनी सेवा करती हूँ, कितने लोगों को पानी देती हूँ, जल देती हूँ, खेत और खलियानों को कितनी सेवा करती हूँ, अगर सागर में डूब गई खत्म हो गई तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। परंतु वो सागर में मिलकर अपना अस्तित्व तो खोती है, परंतु क्या बन जाती है? विशाल, विराट। यदि विराट में खोना है तो अपने अस्तित्व को खोना होगा। ये अनुभव विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन इन सब का आधार लिया जा सकता है, परंतु दिन भर में बार बार देखना कि मैं आत्मा उससे मिली हुई हूं, जो उसकी शक्तियां है वो मेरी शक्तियां है, जो उसमें है वो मुझ में है। जो धैर्य उसमें है वो धैर्य मुझ में है, सब कुछ जो उसमें है वो मुझ में है, इसका सूक्ष्म चिंतन। तो जो भी मुरली की बातें, चाहे इस मुरली या कोई और मुरली, लक्ष्य रखना है इस बात का, मुझे अनुभव करना है। यदि अनुभव नहीं किया तो केवल वो चिंतन मात्र है, बस देखना है ये शरीर पिघल गया, खो गया, खत्म हो गया, विलीन हो गया, तत्व में मिल गया, बच गई मैं आत्मा, और मैं आत्मा उस परमात्मा में समा गई। लवलीन सुदबुद्ध खोजान, ऐसी अलौकिक मस्ती, ये अनुभव। क्या ऐसा अनुभव होता है, अपने आप से पूछना है कि ऐसा अनुभव करो कि जिसमें शरीर है ही नहीं, देहवान है ही नहीं, शरीर पर जो कुछ हो रहा है उसको देखते रहना साक्षी होकर, ताकि इस देह से वैराग उत्पन्न निरंतर रहे। तो सबसे पहली बात मिलन। ये मिलन कैसा है इस पर चिंतन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, कम से कम 100 बातें आ जाएंगी। ये मिलन कैसा है, हर एक बात में कल लिखना। दूसरी बात है स्मृति। बाबा ने क्या किया है, आकर स्मृतियां दिलाई है। इसकी फहरिस्त निकाल सकते हो, कितनी स्मृतियां दिलाई है। और सबसे पहली स्मृति जिसके वजह से पवित्रता, जो इतनी मुश्किल बात है, सबके लिए सहज हो गई, वो थी तुम देवता थे। ये आज तक संसार में किसी भी धर्म स्थापक ने नहीं कहा था। सभी ने पवित्रता और ब्रह्मचर्य की बातें कही थी, पर ये किसी ने नहीं कहा था तत्वमसि, तुम ही वो हो। दिस इज रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट है। किसी भी वेद में ये लिखा नहीं है, किसी भी उपनिषद में लिखा नहीं है, किसी भी धर्म शास्त्र में लिखा नहीं है। और बाद में तो ये लिखा है कि हमारे पूर्वज कौन थे, मनुष्य ही नहीं थे, ये भी लिखा है कईयों ने। तो ये एक क्रांतिकारी वाक्य है कि तुम ही थे, इतनी निर्विकारिता तुम में थी। और ये बात जिन्होंने सुनी, वो छोटी छोटी कन्याएं और बच्चे, उनके अंतर मन में समा गई, और पवित्रता और ब्रह्मचर्य उनके लिए सहज हो गया। तो विस्मृत हुई आत्मा को स्मृति मिल गई, जैसे हनुमान अपनी शक्तियां उसे पता ही नहीं था, बस थोड़ा सा उसको याद दिला दी तो शक्तियां फिर आ गई। तो बाबा ने क्या कर दिया, स्मृतियां दिलाई। ये सेकंड टॉपिक है चिंतन का और अनुभव का। चिंतन करना है कौन कौन सी स्मृतियां दिलाई है, और फिर उसी एकांत में बैठकर अनुभव, सोचना और फिर रुकना और अनुभव, सोचना या लिखना और फिर अनुभव, कौन सी स्मृतियां दिलाई है। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। यदि पुण्य और पाप की परिभाषा अगर कोई पूछे तो सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है, जब जब हम जागृत हैं, चेतना से जो कुछ होता है वो सब पुण्य है। जब जब चेतना मूर्छित है, बेहोश है, विस्मृत है, उससे जो कुछ सारे कर्म होते हैं वो सभी पाप कर्म है। ये सबसे हाईएस्ट डेफिनेशन है पाप की और पुण्य की। बेहोशी में जो किया जाएगा वो पाप, जागृत अवस्था में जो किया जाएगा, जागृत अर्थात आत्माभिमानी, और आत्माभिमान में परमात्माभिमान समाया हुआ है। तो ये दूसरी बात। तीसरा, भक्तों का उदाहरण, भक्तों का सिमिरन, भक्त सिमिरन करते। किसका सिमिरन करते? हमारी विशेषताओं का सिमिरन करते। किस रीति से करते हैं? भजन के रूप में करते हैं, श्लोक के रूप में करते हैं। चालीसवा किसका बना हुआ है? हनुमान कौन है? हम। चालीसा श्लोक, स्तवन, हिंस, यूलोजीज, अलग अलग धर्मों में अलग अलग, ये सब किसका बना हुआ है? सारे भगत। ये हमारी एक एक विशेषता का गुणगान कर रहे, गीत बना रहे, कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हम बाप की याद में उसी तरह खोए हुए हैं, इसीलिए वो हमारी याद में वैसे खोए रहेंगे। कितनी सूक्ष्म बात है। फिर से वो तीन शब्द, सुध बुध खो देना, लव लीन हो जाना, और मस्ती, एक रूहानी मस्ती। जिस मन में विकार है वो रूहानी मस्ती का अनुभव नहीं कर सकता। जिस मन में विकार है, जिस मन में बोझ है अतीत का या भविष्य की चिंता, वो इस मस्ती का अनुभव नहीं कर सकता। तो जैसे भक्त अनुभव करते हैं, हमें भी वही अनुभव, उससे भी अधिक अनुभव, क्योंकि वो तो हमारी कॉपी कर रहे हैं। हमारी परमात्मा के प्रति जो अनुभव है, उसका वो एक छाया मात्र है। तो लक्ष्य रखना है योग ऐसा हो कि जिसमें टाइमलेसनेस आ जाए, स्पेसलेसनेस आ जाए, बॉडीलेसनेस आ जाए, ईगोलेसनेस आ जाए, जहां समय ही रुक जाए। टाइम बाउंड एंड टाइम एनस्लेव्ड मेडिटेशन ना हो। ध्यान केवल घड़ी की तरफ ना हो, कब पूरा होता है, समय ही रुक जाए, ऐसा अनुभव। चेतना इतनी खो जाए, कब होगा और कितनी तपस्या चाहिए और कितना सारा कार्य बाकी है, कितना व्यर्थ और विस्तार में चली गई है। थोड़ा सा समेटना है अपने आप को। और पिछले साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एंड द बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू COVID-19। क्या कुछ नहीं सिखा दिया? एकांत सिखाया, मौन सिखाया, डिस्टेंसिंग सिखाया, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग सिखाया, कि फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट है। जब बंद हो जाते हैं तो कैसी अवस्था होती है। स्वतंत्रता आत्मा को कितनी प्रिय है, यह सिखाया। तो जो जो पाठ जीवन सिखा रहा है, सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, अनुभवों को बढ़ाते जाओ। सबसे शक्तिशाली वाक्य है मुरली का, अनुभवों को बढ़ाते जाओ। जो अशरीरीपन का अनुभव आज हुआ, कल उससे ज्यादा हो। टाइमलेसनेस का अनुभव, क्या समय हुआ है, खो गया जैसी चेतना। स्पेसलेसनेस, कहां थे वही भूल गया। घंटों घंटों बैठना और कोई अनुभव नहीं एक तरफ, और दूसरा एक सेकंड अनुभव हो गया। कितना शक्तिशाली अनुभव होता है वो। हमें याद है जब हम पहली बार यहां आए थे और एक गीत बजा था, बाबा के कमरे में बैठे थे, शिव बाबा तेरी याद में, देखो देखो भूल गए, ऐसा गीत है ना, पुराना गीत, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, देखो देखो माया के तारे तूफान हट गए। ऐसा लगा जैसे कि कोई तीर अंदर छुप गया है। एक सेकंड का अनुभव था पर अब तक नहीं भूला है। जैसे किसी ने भाला मार दिया, खून बह रहा है प्रभु प्रेम का। The unhealing wound of God's love, अनुभव एक सेकंड का होता है बस, और बाकी हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब उसकी तैयारी मात्र है। उस एक सेकंड के अनुभव तक पहुंचने के लिए वो गहरा होता है, शरीर के तल पर होता है, व्यवहारिक होता है, अविनाशी होता है और कभी नहीं भूलता। उसके बाद बहुत सारे अनुभव हुए होंगे छोटे मोटे, पर वो नहीं भूलता क्योंकि उसमें कुछ और था, एक पावर थी, एक शक्ति। तो तीसरा, शुद्ध पुत्र खो जाना, लवलीन हो जाना और मस्ती। चौथा, अमृत वेला। क्या कहा मुरली में? संबंध जो है उनको कर्म और समय के साथ जोड़ना है, अलग अलग समय और अलग अलग कर्मों के साथ। अमृत वेले क्या करना है? मास्टर वरदाता, वरदान लो और वरदान दो, और क्या करो अमृत वेला? भाग्य विधाता की भाग्यवान। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वरदान लेने हैं और वरदान देने हैं, दृष्टि लेनी है और दृष्टि देनी है। बहुत सारे काम करने हैं सुबह सुबह, तो मधुबन में सभी आए हैं, यहां से संकल्प ही लेकर जाएंगे कि सबसे ज्यादा महत्व अमृत वेला को देंगे। उसकी विधि, अवधि और उसकी क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे हर दिन, ताकि हर अमृत वेला हमें प्रभु प्रेम में डुबो दे। हर दिन अमृत वेले के बाद अनुभव हो, आज नया जन्म हुआ है। गीत में सुना, खिड़कियों से धूप को आने दो, अंधेरे बहुत है उसको जाने दो, कुछ काम के नहीं है। माना ये वक्त बड़ा सख्त है, खिड़कियां खोलो, धूप को आने दो। अंतर मन में अंधकार है, वहां से उसको हटाना है। या तो बोध होगा, प्रकाश होगा, या तो अज्ञान या अंधकार। यदि अभी अज्ञान है, कंफ्यूजन है, ये करूं कि वो करूं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, इसको पूछूं या उसको पूछूं, अर्थात अंधकार। अभी अगर हलचल है, अभी यदि व्याकुलता है किसी भी तरह की, ढेर सारे प्रश्न भरे मन में, अगर कोई मिलता है तो लगता है इसको इतने प्रश्न पूछूं, इतने प्रश्न पूछूं। हर नए व्यक्ति को देखकर लगता है इसको ढेर सारे प्रश्न पूछे जाए, परंतु हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पास है और किसी के भी पास नहीं है। जो रियल उत्तर निकलेगा वो अंतर मन से निकलेगा। उस चेतन को शांत कर दो, अवचेतन में सब कुछ है। तो अमृत वेला, बाबा ने कहा अनुभव करो। विचित्र खुशी क्या हो? विचित्र प्राप्तिया, और दिल से गीत निकले, कौन सा? पाना था सुपालिया। विचित्र, विचित्र के बहुत सारे अर्थ है। विचित्र अर्थात थोड़ी अलग, अजीब, वियर्ड, जो आज तक नहीं थी। कल वाली खुशी अलग, ये तो एक नई खुशी आ गई आज, जिसका कभी अनुभव नहीं था ऐसा। इसलिए अमृत वेले की टेक्निक, अमृत वेले की विधि, अमृत वेले की मेथड चेंज करते रहना है। हर दिन नई नई मेथड्स, नई नई टेक्निक्स, नए नए प्रयोग, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, और उसका अनुभव। स्थान को क्रिया के साथ जोड़ना है, स्थान को क्रिया के साथ, समय को अनुभव के साथ, कर्म को अनुभव के साथ, संबंध के साथ, ये सारे काम है। कैसे? स्थान है शांति स्तंभ, वहां गए परिक्रमा लगाई और आ गए, ये नहीं, कुछ करना है वहां पर, कोई क्रिया को जोड़ना है। कौन सी क्रिया को जोड़ेंगे? कोई नई क्रिया बताओ जो शांति स्तंभ पर मन ने की जाए। हाँ, और कुछ नया, बिंदु को बिंदु से जोड़ दो, कुछ भी जो हमारी कमी है उसको इमर्ज करना। शरीर में जहां दर्द है, अगर घुटने में दर्द है उस पर भी प्रयोग किया जा सकता है, वहां से शांति की किरणें घुटने में जा रही है, फिर उधर गए ज्ञान की किरणें जा रही है, फिर उधर गए शक्तियां जा रही है, फिर इधर आए पवित्रता जा रही है। नए प्रयोग करने हैं, एक एक अंग में एक 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 चीज को जाने दो। यहां से शांति पेट में जा रही है, पेट शांत हो गया, नहीं तो हमेशा अशांत रहता है, ढूंढते रहता है कुछ उसको मिल जाए, शांत हो गया। आंखें, पवित्रता जा रही है, पवित्रता आंखों में जा रही है, देह को देखने की इच्छा कम कम हो रही है, शक्तियां भुजाओं में जा रही है, शक्तिशाली हो रही है भुजाएं। स्थान को क्रिया से जोड़ना है तब वो पावरफुल होगा। 2D को 3D बनाना है, जो मूवमेंट नहीं है उसको मूवी बना देना है। जो किताब हमने 10 साल पहले पढ़ी थी, अगर कोई पूछे कि उसमें क्या है, कुछ याद नहीं है, पर कोई फिल्म 10 साल पहले देखी थी उसके डायलॉग भी याद है। क्यों? 3D मूविंग, जो चीजें मूविंग होती है वो याद रहती है, जो चीजें स्थिर है वो याद नहीं रहती है। गुरु ने शिष्य को देखा पानी पर चल रहा है, इतनी सिद्धि, वो जाता है मुझे भी ऐसी सिद्धि चाहिए पानी पर चलने की। गुरु कहते हैं बहुत सिंपल, राम राम कहो बस। शिष्य जाता है, राम पहले से ही कहने चालू करता है, अभी पानी में उतरा नहीं है, पहले से ही राम 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 पानी पे चलना चालू करता है और डूब जाता है। आकर पूछता है ये कैसे हो गया, आपने तो कहा था कि राम बोलो तो मैं चलूंगा। गुरु कहते कितनी बार बोला? वो कहता है कंटिन्यूअस बोलते गया, यही तो गलती की, एक ही बार बोलना था, दैट इज इनफ। इतनी बार बोलना पड़ा, निश्चय की कमी है। एक ही परिक्रमा शांति स्तंभ की ऐसी लगाओ कि पूरे दिसंबर मास तक वो याद आती रहे, इतनी शक्तिशाली। उसको जोड़ दो क्रिया के साथ, विजुलाइजेशन के साथ, कोई और चीज के साथ, तो कुछ होगा। उसी तरह कुटिया या मधुबन या कोई भी ऐसा स्थान। तो कहां थे हम? अमृत वेला, पांचवा मुरली। सुनते समय क्या सोचेंगे? गॉड के या भगवान के विद्यार्थी है, कैसा क्रांतिकारी वाक्य है। हम कौन है? भगवान के विद्यार्थी, भगवान की डायरी, भगवान का पेन, भगवान की विद्यालय, भगवान की पाठशाला, वो टीचर है। क्या सिखा रहा है? अगम निगम के भेद खोल रहा है, वो सिखा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया, ऐसी ऐसी बातें सिखा रहा है, अटपटी खटपटी और चटपटी, उस नशे को अंदर अंदर समाते रखना है। ये नहीं समझना, ये तो वही है, ये तो हमें पता है, हर चीज को हर मुरली को आश्चर्य व्रत दृष्टि से देखना। अच्छा, ऐसे ओहो क्या कहेंगे? ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो ओहो ऐसा है। अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। ये मत कहना हमें तो सब पता है, बाप आए हैं, तुम्हें घर जाना है, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, दिव्य गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, अमृत वेले उठना है, बाप को बड़े प्यार से याद करने हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर बाप को देखना है, सेवा भी करनी है, हर एक का कल्याण करना है, बड़े बड़े चित्र हो, बड़े बड़े ट्रांसलाइट हो, ज्यादा हबच नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं करनी है, ये सब हमको पता है। ऐसा नहीं, अच्छा ऐसे देखना है उसको, जैसे छोटा बच्चा कैसे देखता है, छोटा बच्चा समुद्र के किनारे सीप बिन रहा है और वहां पे जॉगिंग करने वाले लोगों को लगता है टाइम वेस्ट, ये करना चाहिए एक्सरसाइज, और वो बच्चे को ये सब नहीं करना है। बच्चे को आश्चर्य है वो सूर्य कैसे उग रहा है, कहां से उग रहा है, उसको ये सारे जो उसके प्रश्न है, ये अजीब प्रश्न है, उत्कंठा से भरे प्रश्न है, क्यूरियोसिटी है, इनक्विजिटिवनेस, वो क्यूरियोसिटी, वो इनक्विजिटिवनेस, वो नएपन का भाव अंदर लाना है कि इसमें कुछ तो वो है जो आज तक नहीं सुना कभी, उस आश्चर्य के भाव से, उस विस्मय के भाव से। विस्मय और आश्चर्य दो शब्द है, दोनों में क्या भेद है, भाषा कहती है दोनों सेम है डिक्शनरी, आश्चर्य बाहर है, विस्मय भीतर है। ओहो विस्मय, विस्मय अंदर कि मैं कौन, अच्छा आत्मा, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना मुझे सब पता है। योग की शुरुआत भी मैं कौन हूं, यहां से करे तो बहुत अच्छा, जो कोर्स में दूसरों को सिखाते हैं ना बस वैसी ही। हम पूछते हैं तुम कौन हो, वो अपना नाम बताता है, कितनी खुशी होती है, नहीं तुम वो नहीं हो, अब हम बताएंगे तुमको। अच्छा क्या करते हो, ये करते हो, नहीं तुम्हारे बाप का नाम, एकदम जैसे कि यही तो चाहिए था हमको, अब हम अपना सिक्का जमाएंगे, हम बताएंगे तुमको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, छोड़ूंगा नहीं, प्रजा बना के रहूंगी, खबरदार अगर कोर्स के पहले भाग गए तो। अपने से ही पूछता है मैं कौन, ये जो इतना दर्द हो रहा है घुटना में, ये मैं नहीं हूं, पर जब दर्द होता है तो मैं ही घुटना हूं, ऐसी तो अनुभूति होती है, घुटना दर्द की अनुभूति शरीर के तल पर है, इसलिए इतनी गहरी है, भूख जब लगती है शरीर के तल पर है, जब ठंडी लगती है शरीर के तल पर है, इसलिए ठंडी की अनुभूति इतनी गहरी है कि मन को प्रभावित करती है। अध्यात्म की प्रभु प्रेम की अनुभूति, बाप टीचर सदगुरु हो, फिर ऊपर गए शिव बाबा को टच किया, तुम ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हो, सतयुग में मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न हूँ, भक्तों को सकाश, फिर फरिश्ता बनकर इधर सकाश और उधर सकाश, और 5:45 बज गए, काम पूरा हुआ, अनुभूति जीरो, क्योंकि सब मन की कल्पनाओं के तल पर हो रहा है, उसको देह पर उतारना है। उसके लिए योग में जब बैठते हैं तो ऐसे बैठो जैसे अचल पर्वत, उंगली भी ना हिले, अभी बैठ जाओ, शरीर में दर्द होने लगे तब तक बैठे रहना। अनुभव करना है, मैं दोस्त के साथ जो जो करता हूँ वो उसके साथ करने का अनुभव। नेक्स्ट, भगवान मेरा जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, इसका भी गहराई से अनुभव। नेक्स्ट, भगवान मेरी माँ है। बाबा ने कहा जब थक जाओ तो क्या करो, माँ के पास आ जाओ। आकाश से गिरती हुई बूंदों को बारिश की, कोई पूछता है इतनी ऊपर से गिरती हो तुम्हें डर नहीं लगता है चोट का, तो कहती है नहीं, मैं सीधा माँ की गोद में गिरती हूँ, कैसी चोट। तो वो माँ है, अनुभव करना है, सोते समय ये अनुभव किया जा सकता है कि मैं उस शिव माँ की गोद में सो रहा हूँ। थक गया हूँ, बहुत सेवाएं की है दिन भर, थकान है, अगला वो मेरा क्या है, बच्चा। ये माताओं के लिए आसान है और कुमारों के लिए उससे आसान। बाबा ने कहा जैसे कोई बच्चा बहुत गुणी होता है कुलदीपक, तो यहाँ पर भी जब थक जाओ या और कुछ हो जाए तो उसके पास चले जाओ, खेलो उसके साथ। माता बहुत अच्छा अनुभव करती है इसका, तो ये भी एक अनुभव है। और एक इसी मुरली में कहा कोई भी संबंध छूटना ना पाए, अगर एक भी संबंध छूटा तो बुद्धि उसके तरफ जाएगी, फिर किसी को माँ ही बना देंगे, तो किसी को भाई, तो किसी को बहन। और पांचवा, मास्टर सर्वशक्तिवान। जब दिल शिकस्त हो जाओ तो दिल खुश बनने के लिए याद दिलाओ अपने आप को, स्मृति स्वरूप की स्मृति कि मैं कौन हूँ, ईश्वरीय शक्तियां मुझ में है, स्पिरिचुअल पावर से भरा हूँ। तो ये हो गई 10 बातें। इन 10 बातों का क्या करना है, अनुभव, केवल थियरी नहीं, केवल लिख के नहीं रखना है, एक एक बात का अनुभव। अनुभव से क्या होता है, सोकर देखना उसकी गोद में, उसका हाथ पकड़कर चल के देखना, वो जीवन साथी है, उसको अपने जीवन की हर बात सुना कर देखना। वो जीवन साथी जो होते क्या करते हैं, धोखा देते हैं, कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं, परंतु ये छोड़ता है क्या? तो ऐसी ये 10 बातें। उसके बाद अगला, रमणीक, विचित्र। बाबा ने कहा अनुभव कैसे हो तुम्हारे, रमणीक हो, विचित्र हो, नए नए हो हर दिन। नेक्स्ट, सर्व। सर्व अर्थात सारे संबंध एक भी छूटने न पाए। संसार में क्या कहते हैं, पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, सब चाहिए, तब संपन्नता मानते हैं संबंधों में। यहां पर क्या, एक ही से सारे संबंधों का अनुभव। ये संबंध बाबा महान और महिमा उस एक की है। क्या महान हो, क्या महानता और क्या महिमा है कि वो बाप भी है और बच्चा भी, ऐसा दुनिया में और कोई नहीं रह सकता। अपने मन को चिंतन के लिए टॉपिक्स देने हैं ताकि मन उनमें रमन करे सारे दिन भर, जो सुबह सुना या पढ़ा, जैसे ये मुरली है, इसको सुना, इसको पढ़ा, इसका चिंतन किया, उसमें रमन कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। इतना करने मात्र से बुद्धि जो व्यर्थ में लगी रहती है उससे थोड़ी तो ऊपर ही रहेगी, उस लेवल पे नहीं जाएगी जहां पर सबकी बुद्धि जा रही है, थोड़ी सी ऊपर रहेगी, केवल थोड़े से चिंतन मात्र से, ज्ञान के चिंतन। उसके बाद दिल्ली वालों को क्या कहा, नेक्स्ट पॉइंट, 2 बातें। कौन सी बातें, दिल में दिलाराम। इसका कैसे अनुभव करेंगे, दिल यहाँ है, पर ये दिल यहां वाले दिल के लिए नहीं कहा जाता, मन बुद्धि के लिए कहा जाता है। फिर भी अनुभव शरीर के तल पर करना है, तो जैसे अनुमान को दिखाते हैं वैसे यहां देखना है उसको। आंखें बंद करके बैठो और यहां देखो कि मेरे हृदय में वो विराजमान है, हृदय इधर है, वो ज्योति मेरे हृदय में है और वो ज्योति का प्रकाश पूरे हृदय में फैल रहा है, सारा हृदय स्वच्छ शुद्ध हो रहा है, उसके साथ वो जो रक्त स्पंदित हो रहा है सब कुछ शुद्ध हो रहा है, सारी नलियां खुल गई हार्ट की और पूरा खून ही स्वच्छ हो गया, तो सारी बीमारियां खत्म, फायदा हो गया ना। जरूरी नहीं यही रखना है, कहीं पर भी रखा जा सकता है। अनुभव अनुभव, हर चीज का टारगेट एक ही रखना है, जो कुछ मैं कर रहा हूं दैट शुड बी एक्सपीरियंस्ड, बस उसका क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, बस इतना लक्ष्य रखना है हर चीज का हर बात का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाँ एक बहुत शक्तिशाली बात बाबा ने यहां कही है आज की मुरली में, योग निद्रा। बाबा ने कहा जो व्यक्ति बिजी होता है उसको टाइम नहीं होता है कोई चीज के लिए, वो कहते हैं हम बिजी है, वैसे ही तुम भी सुबह से लेकर तो योग निद्रा तक बिजी रहते हो। योग निद्रा की दो परिभाषाएं दी है, शरीर से न्यारी अवस्था, अशरीरी अवस्था और प्रभु प्रेम, इन दोनों स्थितियों का रात को सोते समय अभ्यास करना है। योग निद्रा अपने आप में एक टेक्निक है, कुछ दिनों से कुछ भाई बहने कर रहे हैं, लेट के कमेंट्री दी जाती है और उसमें बहुत सारी स्टेप्स है, शरीर को शिथिल छोड़ देना फर्स्ट, हाथ बाजू में पैर बाजू में, श्वास को देखना, एक एक अंग को देखना, शिथिल छोड़ते छोड़ते जाना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, एक संकल्प क्रिएट करना, फिर विजुअलाइजेशन में जाना और फिर वापस शरीर में आना। इसमें बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, एडिक्शंस को ठीक किया जा सकता है, इससे नई बातें सीखी जा सकती है, लर्निंग इसी होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियों पर इसका प्रयोग किया गया है। योग निद्रा अर्थात उसमें ना सोना है उसमें ना जागना है, बीच की अवस्था है, जो ये दिन में कई बार की जा सकती है। 45 मिनट्स की योग निद्रा अर्थात 3 घंटे की नींद के बराबर है, वो अपने आप में एक टेक्निक है वो, और उसमें हम वही कर रहे हैं जो आज बाबा ने कहा है, अशरीरी अवस्था स्वतः आ जाती है उसमें, इतनी पावरफुल अशरीरी अवस्था आती है और उस अशरीरी अवस्था में हम अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं और वहां से हमें जो करना है, जो चाहते हैं, जो लक्ष्य है उसको ठीक किया जा सकता है। सच अ पावरफुल टेक्निक योग निद्रा। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति जो है प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति है तुम्हारी, योग निद्रा इसका क्या करना है, अभ्यास करना है, बहुत अभ्यास करना है, कई बार अभ्यास करना है, अपनी कमेंट्री क्रिएट करनी है, पहले सुनो जो कमेंट्रीज बनाई गई है और फिर अपनी कमेंट्री खुद ही बनानी है और अपने शरीर पर प्रयोग करना है, कई बार दिन में 3 बार 2 बार 4 बार, रात को जब भी बेड पर जाते हैं योग निद्रा करते ही सोना है, जब भी बेड पर सोने जाएंगे योग निद्रा करते करते सो जाना है अशरीरी स्थिति में। समय पूरा हो रहा है तो योग निद्रा इसका अभ्यास करना है। और कौन सी बात कही बाबा ने, वो हो गया, अगर इस प्रवृत्ति में रहेंगे तो उस प्रवृत्ति का आकर्षण नहीं होगा, देह और देह के संबंध पदार्थ सबसे अपने आप वितराग भाव उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान तुमको ऑफर कर रहा है तो ऑफरिंग लेनी चाहिए, इतनी बड़ी ऑफर कर रहा है वो भी ऑफर नहीं लेते, ले लो, वो दे रहा है ले लो। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व के दो स्लोगन आए हैं यहां पर, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, जो भी ईश्वरीय कार्य चल रहा है मन से सहयोग देते रहना है। अगर स्थूल सहयोग नहीं दे सकते तो मन से। दूसरा एक महावाक्य है मम्मा का, कौन सा? हुक्मी हुकुम चला रहा है। हमारा रिस्पॉन्सिबल वो है, मुझे उसको कहाँ रखना है, कौन सी सेवा देना है उसका काम है। मैं अपनी इच्छाएं नहीं प्रकट करते रहूं, बाबा मुझे ये सेवा नहीं चाहिए वो सेवा दो, ये नहीं चाहिए वो दो। Who am I to decide? उसके ऊपर छोड़ दो। हाईएस्ट समर्पण यही है। उसके बाद में बाबा ने कहा प्रत्यक्षता का पर्दा कैसे खुलेगा? पांच पांच मिनट सेवा करते रहो, दस दस मिनट सेवा करते रहो, बीमार बीमार की सेवा करे, अनपढ़ अनपढ़ की सेवा करे, और जो बाहर नहीं जा सकते वो घर पे बैठ के सेवा करे, जो वाणी से नहीं सेवा कर सकते वो मन से सुखमय स्थिति से सेवा करे, वायुमंडल की सेवा करे। तो इतनी सारी बातें एक ही मुरली में, एक ही शब्द पर चिंतन किया जा सकता है, सहयोग। यदि कोई ईश्वरीय कार्य चल रहा है हम उसमें बाधा बन रहे तो बोझ होगा। यदि कोई तपस्या कर रहा है हम उसकी तपस्या में विघ्न डाल रहे, तपस्वियों के विघ्नों में, तपस्वियों की तपस्या में कौन विघ्न डालते थे? असुर। और क्या होता था फिर? उनको शाप मिलता था। इसलिए हमारी वजह से किसी की स्थिति डिस्टर्ब ना हो, हमारे मुख से ऐसे कोई कमेंट्स, टॉन्ट्स, तीर लगने वाली बातें ना निकले कि जिससे कोई दुखी हो जाए और उसकी तपस्या गिर जाए। ये सहयोग है। तो हर चीज का क्या करना है? अनुभव। ऐसे कैसे अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे मिलन मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे नशे में रहने वाली आत्माओं को, लवलीन रहने वाली आत्माओं को, मस्त रहने वाली आत्माओं को, मौज में मनोरंजन में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माओं को, ऐसे भगवान को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाली आत्माओं को। बाबा को कह देना, क्या कह देंगे? जब तक तुम मेरी नहीं सुनते मैं उठूंगी ही नहीं, तुम्हारे सामने ही बैठी रहूंगी। हाँ, ये भी एक पॉइंट था, उससे छोड़ूंगा नहीं। इतने दिनों के बाद मिले हैं, सेकंड सेकंड का गिन गिन के हिसाब लेंगे, पूरा तुमको खाली करके ही रहेंगे। जो तेरा ज्ञान है, जितना तेरा ज्ञान है, जैसा भी तेरा ज्ञान है, बहुत तड़पाया, अब नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा ही नहीं। कितना अच्छा संकल्प है, पकड़ के रखूंगा। ऐसे दिल को दिलाराम में बसाने वाली आत्माओं को, ऐसे अधिकारी आत्माओं को, विदेशियों की, दिल्ली वालों के लिए दो विशेषता है, ऐसे सदा योग निद्रा का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, योग निद्रा में रहने वाली आत्माओं को, नींद भी योग में कन्वर्ट करने वाली आत्माओं को, ऐसे पाना था सो पा लिया ये गीत गाने वाली आत्माओं को, ऐसे हुक्म हुकुम चला रहा है सर्वस के सहयोग से, स्नेह से सुखमय संसार बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे जीवन साथी बना देने वाली आत्मा, उसके साथ ही रहने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रत्यक्षता का पर्दा हटाने वाली आत्माओं का, पांच पांच मिनट दिन भर में सहयोग देने वाली आत्माओं को, कुछ न कुछ सेवा करते रहने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। अभी यहाँ से जाएंगे और आज ही योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, लेटते हुए धीरे धीरे शरीर को देखते देखते अशरीर हो जाएंगे और सो जाएंगे। ओम शांति।